आज के इस गहरे विश्लेषण में हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन की जो किताब है ना द बुक ऑफ जॉब उसके सेशन 29 पर बात करने वाले हैं।
और ये सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
बिल्कुल, हमारा मिशन आज ये समझना है कि पीड़ा, दुख और विश्वास, मतलब इनके बीच असल में क्या संबंध है और इस किताब का जो असली संदेश है वो आखिर है क्या।
हाँ, क्योंकि देखा जाए तो हम इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में होने वाली बुरी घटनाओं का कोई ना कोई कारण ढूंढने के लिए बेचैन रहते हैं।
वही तो, और ये जो स्रोत है ना वो हमारी इस पूरी सोच को ही जड़ से चुनौती देता है। मतलब इस विषय की गहराई में जाने से पहले जरा एक आम परिस्थिति के बारे में सोचिए।
बताइए।
मान लीजिए जब किसी की हड्डी टूट जाती है और वो इंसान अस्पताल जाता है तो वहां एक तरह की सटीकता होती है ना। मतलब एक्सरे होता है।
हाँ, और उस एक्सरे फिल्म में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है।
बिल्कुल, डॉक्टर बस उस लाइन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए ये रही समस्या, बस इसी वजह से आपको दर्द हो रहा है।
ये बहुत ही सटीक उदाहरण है क्योंकि ऐसी स्थिति ना पूरी तरह से स्पष्ट होती है, इसमें कोई उलझन नहीं होती। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी।
सही बात है।
और सच कहूं तो इससे हमारे इंसानी दिमाग को ना एक बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है। हमारी फितरत ही ऐसी है कि हम चीजों को मतलब स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि दुनिया की हर घटना के पीछे का कारण हमें मालूम हो, लेकिन फिर जब हम जीवन की गहरी पीड़ा, अचानक आने वाले दुखों और विश्वास के मुद्दे पर आते हैं ना तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है।
बिल्कुल,
एकदम धुंधला हो जाता है सब कुछ।
हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता और कोई डॉक्टर आकर ये नहीं बता सकता कि किसी के जीवन में अचानक से इतना बड़ा तूफान क्यों आ गया।
और इसी स्थिति को डॉक्टर वॉल्टन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। जीवन के इस धुंधले परिदृश्य में ना किसी भी दुख या पीड़ा का सीधा कारण हमें नहीं मिलता। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि यहीं से आज की चर्चा का सबसे मुख्य सवाल खड़ा होता है।
हाँ।
क्या हम हमेशा अपने दुखों का कोई तार्किक कारण खोज सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ या फायदे के ईश्वर पर विश्वास कर सकता है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है। डॉक्टर बॉल्टन का विश्लेषण हमारे सामने कुछ ऐसे तथ्य रखता है जो किसी भी इंसान के लिए जीवन के इन सबसे कठिन सवालों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करेगा।
तो चलिए सबसे बुनियादी और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जब भी किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो पहला सवाल क्या आता है दिमाग में?
यही कि आखिर क्यों।
बिल्कुल, आखिर क्यों, मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है। इंसान का दिमाग तुरंत अतीत में चला जाता है, अपने कर्मों की फाइलें खंगालने लगता है।
हाँ, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन के अनुसार इस सवाल का जवाब खोजना मतलब पूरी तरह से व्यर्थ है।
अरे ऐसा क्यों?
देखिए, इस किताब के मुख्य पात्र जॉब को ही ले लीजिए, जिसके नाम पर यह किताब है, उसने अपना सब कुछ खो दिया, परिवार, संपत्ति, सेहत, सब कुछ। फिर भी उसे खुद कभी ये नहीं बताया गया कि उसने वो भयंकर कष्ट क्यों सहा।
ये कमानी का सबसे परेशान करने वाला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मतलब स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जॉब के व्यवहार या उसके कर्मों में उसकी पीड़ा का कोई कारण नहीं छिपा था।
बिल्कुल नहीं। इंसान की ना एक बहुत पुरानी आदत है कि वो हमेशा अतीत में जाकर कारणों को खोजने की कोशिश करता है, मानो अतीत की किसी गलती ने वर्तमान के दुख को जन्म दिया हो।
हाँ, हम सब ऐसा ही करते हैं।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन यहाँ बाइबल के जॉन 9 का हवाला देते हुए एक बहुत ही अहम बात बताते हैं। इस प्रसंग में जब यीशु से पूछा जाता है कि एक व्यक्ति के अंधेपन का कारण क्या है,
क्या उसके पाप या उसके माता पिता के पाप,
हाँ, तो यीशु उस पूरी सोच को ही नकार देते हैं। उनके अनुसार हमें अतीत में जाकर कारण खोजने के बजाय भविष्य की ओर देखकर उद्देश्य खोजना चाहिए। चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। अतीत में कारण खोजना और भविष्य में उद्देश्य खोजना, ये दोनों सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं।
हाँ।
लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दर्द में होता है ना,
हाँ,
तो उसके लिए भविष्य की तरफ देखना मतलब लगभग असंभव हो जाता है।
ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय संघर्ष है। देखिए, अतीत में कारण खोजने का मतलब है कि हम लगातार खुद को या दूसरों को दोष देते रहते हैं।
जैसे कि अगर मैंने उस दिन वो फैसला ना लिया होता।
हाँ, या अगर ईश्वर ने मुझे ये सजा ना दी होती। ये सोचना इंसान को अपराध बोध और गुस्से के एक अंतहीन चक्कर में फंसा देती है।
बिल्कुल।
इसके विपरीत भविष्य में उद्देश्य खोजने का मतलब है कि जो हो गया उसका कोई स्पष्ट कारण भले ही ना हो, लेकिन हम इस दुख का इस्तेमाल आगे चलकर किसी सकारात्मक बदलाव या दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकते हैं? ये इंसान को हीलिंग की दिशा में ले जाता है।
पर अनश्रोत में इस बात को लेकर भी एक बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है ना। वॉल्टन कहते हैं कि उद्देश्य खोजना भी हमेशा सफल नहीं होता।
हाँ, ये बहुत कड़वा सच है।
मतलब हम भविष्य की ओर देख तो सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इस दर्द से कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें कोई उद्देश्य मिल ही जाए। कई बार कोई महान उद्देश्य होता ही नहीं है।
और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि यह मानना पूरी तरह गलत है कि हर दुखद घटना के पीछे कोई बहुत महान उद्देश्य ही छुपा होगा। कई बार इंसान जब इस दुनिया में कारण या उद्देश्य नहीं खोज पाता ना, तो वो खुद को एक झूठी तसल्ली देने लगता है। वो सोचता है कि चलो, इस दुनिया में कारण नहीं पता चला तो क्या हुआ,
मरने के बाद पता चल जाएगा।
बिल्कुल, वो सोचता है कि मरने के बाद स्वर्ग में कोई अंग कारण बताने वाला काउंटर होगा, जहां एक लंबी लाइन में लगकर वो ये जान पाएगा कि उसके साथ फला बुरा हादसा क्यों हुआ था।
अरे बाप रे।
वॉल्टन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कारण जानना तो दूर की बात है, हो सकता है कि वहां कोई कारण मौजूद ही ना हो।
रुकिए रुकिए, ये मानना बहुत मुश्किल है। क्या आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में कुछ चीजें बिना किसी कारण के हो रही हैं?
स्रोत तो यही इशारा करता है।
लेकिन ये तो हमें सिखाए गए विज्ञान और हमारे रोजमर्रा के अनुभव के भी बिल्कुल खिलाफ है। अगर हमारे घर की कोई मशीन खराब हो जाती है, मान लीजिए पंखा चलना बंद हो गया या कार स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम तुरंत उसका कारण ढूंढते हैं।
बिल्कुल ढूंढते हैं।
हमें पता होता है कि कोई तार टूट गया होगा या बैटरी खत्म हो गई होगी, मतलब कारण हमेशा मौजूद होता है। तो हम अपने जीवन की घटनाओं को इस तरह क्यों नहीं देख सकते?
ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। इंसान इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड को एक साधारण यांत्रिक मशीन की तरह देखता है।
मतलब कॉज और इफेक्ट की तरह?
हाँ, हम सोचते हैं कि हर घटना के पीछे कारण और परिणाम का एक सीधा तार जुड़ा है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन याद दिलाते हैं कि ये ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है। इस दुनिया में ना अव्यवस्था नाम की भी एक चीज मौजूद है, जिसे अंग्रेजी में नॉन ऑर्डर कहा गया है।
अव्यवस्था मतलब सब कुछ बेतरतीब है?
बेतरतीब नहीं, बल्कि दुनिया की प्रकृति बहुत जटिल है। यह दुनिया कोई परफेक्ट स्थिर मशीन नहीं है, जहां हर एक्शन का एक स्पष्ट तार्किक रिएक्शन हो। अव्यवस्था का मतलब है कि कई बार बहुत सी घटनाओं का कोई सीधा कारण नहीं होता। वे किसी के पाप की सजा नहीं होती, वे बस इसलिए घटती हैं क्योंकि इस भौतिक दुनिया की प्रकृति ही वैसी है।
जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।
हाँ, या बीमारियां होती हैं। इसलिए वॉल्टन कहते हैं कि कारण हमसे जानबूझकर छिपाए नहीं गए हैं, बल्कि कई बार वास्तव में कोई कारण होता ही नहीं है।
अगर हम इसे सच मान लें तो ये इंसान के लिए बहुत ही डरावना विचार है।
वो तो है।
इंसान का दिमाग हमेशा पैटर्न ढूंढता है ना? और जब उसे कोई कारण नहीं मिलता, कोई पैटर्न नजर नहीं आता, तो इंसान का अगला कदम क्या होता है?
वो सीधे ईश्वर की तरफ उंगली उठाता है।
बिल्कुल। अगर दुनिया में अव्यवस्था है और मेरे दुख का कोई कारण नहीं है, तो फिर इस व्यवस्था को बनाने वाले ईश्वर को जवाब देना होगा।
और ठीक यही जॉब की सबसे बड़ी गलती थी। वॉल्टन बताते हैं कि जब हमें दुनिया के काम करने का तरीका समझ नहीं आता ना, तो हम ईश्वर से ये उम्मीद करने लगते हैं कि वे आकर खुद का बचाव करें।
हम उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं।
बिल्कुल। जॉब ने अपनी पीड़ा में आकर क्या किया? उसने एक तरह से ईश्वर को अदालत में बुला लिया। वो एक अभियोजक, एक प्रोसिक्यूटर की तरह बर्ताव करने लगा, जो चाहता था कि ब्रह्मांड का रचयिता कटघड़े में खड़ा हो और सफाई दे कि उसने जॉब के साथ ऐसा क्यों होने दिया।
लेकिन अगर आप एक इंसान के नजरिए से सोचें, तो क्या जवाबदेही की मांग करना मतलब मानवीय स्वभाव नहीं है?
कैसे?
मेरा मतलब है, जैसे एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिक किसी राजनेता से जवाब मांगते हैं कि आपने ये फैसला क्यों लिया, आपकी नीतियों से हमें नुकसान क्यों हो रहा है, तो वैसे ही हम इस ब्रह्मांड के रचयिता से जवाब क्यों नहीं मांग सकते? आखिरकार अगर वे सर्वशक्तिमान हैं, तो नियंत्रण तो उन्हीं के हाथ में है ना?
अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो यह तुलना सुनने में तार्किक जरूर लगती है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन के अनुसार यह पूरी तरह से गलत है।
अच्छा।
हाँ, हम ईश्वर के बारे में बहुत ही यांत्रिक तरीके से सोचते हैं, मानो ईश्वर कोई राजनेता हो या किसी बड़ी कंपनी के CEO हो, जिन्हें हर तिमाही में अपने शेयर धारकों को जवाब देना होता है।
हाँ, ये बात तो है।
ईश्वर ब्रह्मांड में क्या कर रहे हैं, यह हमारी समझ और हमारे अधिकार क्षेत्र से बहुत बाहर की बात है। स्रोत में चैप्टर 40 का जो संदर्भ दिया गया है, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है।
उसमें क्या है?
वहाँ ईश्वर जॉब को एक तरह से बहुत ही तार्किक और विनम्र चुनौती देते हैं। वो जॉब से कहते हैं कि वो दुनिया चलाने की बागडोर अपने हाथ में ले ले और कोशिश करके देखे।
मतलब ईश्वर जॉब से कहे, ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर कर सकते हो तो लो तुम चला के दिखाओ इस ब्रह्मांड को।
बिल्कुल, और ये किसी इंसान के लिए कितनी बेतुकी बात है। हम इंसान एक छोटे से परिवार या एक शहर को बिना किसी समस्या के नहीं चला सकते, तो पूरे ब्रह्मांड की जटिलताओं को संभालना तो बहुत दूर की बात है।
ये तो सच है,
हम ईश्वर से बेहतर काम नहीं कर सकते। वॉल्टन के अनुसार यही वो जॉब वाली मानसिकता है जिससे हमें हर हाल में बचना चाहिए। हम खुद को इतना ऊंचा समझ लेते हैं कि हम ईश्वर से उनके काम का हिसाब मांगने लगते हैं। इंसान इस जटिल दुनिया को पूरी तरह समझ ही नहीं सकता।
अब अगर हम ईश्वर से जवाब नहीं मांग सकते और हमें हमारी तकलीफों का कोई कारण भी नहीं मिलने वाला, तो इंसान के अंदर एक अजीब सा खालीपन आ जाता है।
बिल्कुल आता है।
वो सोचता है, तो फिर मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ, मैं प्रार्थना क्यों करूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनकर क्यों रहूँ।
हाँ,
और यहीं से इस पूरी किताब का सबसे तीखा और गहरा सवाल जन्म लेता है, जो हमारी चर्चा को एक नए मुकाम पर ले जाता है।
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बुक ऑफ जॉब में असल में एक चैलेंजर यानी एक चुनौती देने वाला पात्र है, जो पूरी किताब का सबसे बड़ा सवाल पूछता है।
और वो सवाल क्या है?
वो पूछता है, क्या कोई भी इंसान बिना किसी स्वार्थ या फायदे के ईश्वर की सेवा करता है? इसे श्रोत में निस्वार्थ धार्मिकता कहा गया है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये पूरी किताब का और शायद हर इंसान के विश्वास का मुख्य परीक्षण है।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सवाल वाकई बहुत चुभने वाला है। अगर हम इसे आम जिंदगी के एक उदाहरण से समझें, तो हम इंसान अक्सर ईश्वर को एक ब्रह्मांडीय वेंडिंग मशीन की तरह देखते हैं।
वेंडिंग मशीन?
हाँ, हम उसमें अपने अच्छे कर्मों, अपनी प्रार्थनाओं का सिक्का डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीचे से आशीर्वाद, सुख, स्वास्थ्य या सफलता का पैकेट बाहर आएगा।
अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है।
लेकिन जब हम सिक्का डालते हैं और वो मशीन अटक जाती है, कोई आशीर्वाद बाहर नहीं आता, तो हम मशीन को गुस्से में हिलाने लगते हैं।
ये वेंडिंग मशीन वाला उदाहरण बहुत ही गहरा है। वॉल्टन बताते हैं कि अगर हम ईसाइयों की बात करें, तो उन्हें अपनी आस्था में अनंत जीवन, पापों की क्षमा और उद्धार जैसे कई बहुत बड़े आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन सच्चाई ये है कि ये लाभ किसी इंसान ने अपने कर्मों से कमाए नहीं है। इंसान इन फायदों का हकदार नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है।
तो फिर चैलेंजर का सवाल क्या साबित करना चाहता है?
चैलेंजर का सवाल और स्रोत का असली संदेश ये है कि अगर वो वेंडिंग मशीन कोई भी पैकेट बाहर ना निकाले, अगर आपको बदले में कुछ ना मिले, तो क्या तब भी आप ईश्वर की इबादत करने के लिए तैयार हैं? क्या कोई इंसान बिना किसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के सिर्फ विश्वास कर सकता है?
लेकिन जब किसी इंसान के अनुभव इतने कड़वे हों कि उनका कोई स्पष्टीकरण ही ना हो, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दुख हो, तब बिना किसी फायदे के विश्वास करना कैसे संभव है?
तब सुप के अनुसार सिर्फ भरोसा ही एकमात्र उपाय बचता है। वॉल्टन बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जहां कारण विफल हो जाते हैं, जहां हमारी समझ काम करना बंद कर देती है, वहां भरोसा काम आता है। अगर हमारे पास जीवन की हर घटना का जवाब होता या हर दुख का कारण पता होता, तो हमें भरोसे या विश्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हम बस एक गणितीय समीकरण की तरह जिंदगी जीते।
ये बहुत ही गहरी बात है।
हाँ, और वॉल्टन कहते हैं कि हमें अपने दिमाग में मिलने वाले फायदों का अवमूल्यन करना होगा।
अवमूल्यन से आपका मतलब है कि हमें उन फायदों को अहमियत देना बंद करना होगा। हमें ये सोचना बंद करना होगा कि भगवान की पूजा करने से हमें बदले में क्या मिल रहा है।
एकदम सही। वॉल्टन समझाते हैं कि इंसान को सिर्फ फायदों के पीछे भागने वाला उपभोक्ता नहीं बने रहना चाहिए, हमें ईश्वर की ब्रह्मांडीय योजनाओं में उनका एक भागीदार बनना चाहिए।
उपभोक्ता नहीं, भागीदार।
हाँ, ईश्वर ने इंसान को इस दुनिया की महान योजनाओं और उद्देश्यों में भागीदार बनाया है। हमारा लक्ष्य उस बड़ी योजना का हिस्सा बनना होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये हिसाब लगाना कि बदले में हमें कौन सा आशीर्वाद मिल रहा है।
जब हम उपभोक्ता की मानसिकता से बाहर निकलते हैं, तभी असली निस्वार्थ धार्मिकता की शुरुआत होती है।
बिल्कुल।
इस निस्वार्थ धार्मिकता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ना, डॉक्टर वॉल्टन एक बहुत ही शक्तिशाली और ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं।
हाँ, इब्राहिम का उदाहरण।
वो उदाहरण है इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक का। ये चैप्टर 22 का हिस्सा है और मुझे लगता है कि ये इस पूरी चर्चा का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, क्योंकि यह सीधे उस वेंडिंग मशीन वाली सोच पर चोट करता है।
इब्राहिम की कहानी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाती है। जब ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि दे, तो वह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। उस पहाड़ की चोटी पर, उस वेदी पर सिर्फ एक पिता अपने बेटे को नहीं खो रहा था।
हाँ, स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वहाँ पूरी की पूरी वाचा यानी ईश्वर के साथ किया गया पूरा करार और उसके सारे वादे उस वेदी पर टिके थे।
बिल्कुल।
अगर इसहाक की बलि चढ़ जाती तो इब्राहिम का कोई परिवार आगे नहीं बढ़ता, उसे कोई जमीन नहीं मिलती, दुनिया को मिलने वाला कोई आशीर्वाद नहीं होता। एक झटके में सब कुछ जो ईश्वर ने उसे देने का वादा किया था खत्म हो जाता।
और यही बात इस उदाहरण को इतना शक्तिशाली बनाती है। स्रोत यह भी याद दिलाता है कि इससे पहले भी इब्राहिम ने ईश्वर के कहने पर अपना घर बार छोड़ा था।
हाँ, छोड़ा था,
लेकिन तब ईश्वर ने उसे बदले में एक महान राष्ट्र और बहुत सारा आशीर्वाद देने का वादा किया था। उस समय उसके पास उम्मीद करने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन इस बार चैप्टर 22 में जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था, उसके पास खोने के लिए सब कुछ था और पाने के लिए कुछ भी नहीं। उसे कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था बिना किसी गारंटी के।
तो ये कदम जहां एक इंसान अपना सब कुछ बिना किसी शर्त के छोड़ने को तैयार है, वो चैलेंजर के उस मुख्य सवाल का सीधा जवाब कैसे बनता है?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो ये उस सवाल का अंतिम और सबसे प्रामाणिक जवाब है।
वो कैसे?
जब इब्राहिम ने अपना सब कुछ त्यागने की पूरी तैयारी कर ली, जब उसने अपने वादे, अपने भविष्य को वेदी पर रख दिया, तब ईश्वर ने उसे रोका और कहा, अब मैं जानता हूँ कि तुम ईश्वर से डरते हो। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि अगर इब्राहिम ये सब किसी फायदे के लिए कर रहा होता तो ये कभी साबित नहीं होता। ईश्वर कह सकते थे कि तुम तो बस फायदों के लिए मेरे साथ हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जमीन का वादा किया है।
बिल्कुल।
लेकिन इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया।
उसने सच्ची निस्वार्थ धार्मिकता दिखाई।
हाँ, उसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपने सारे फायदों को छोड़कर भी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से सच्चा रह सकता है।
तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो बुक ऑफ जॉब का संदेश ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम बहुत प्रार्थना करेंगे तो एक दिन हमें हमारी सारी पीड़ाओं का कारण मिल जाएगा।
बिल्कुल नहीं।
बल्कि इसका असली संदेश यह है कि जब कोई कारण मौजूद ना हो, जब जीवन में ऐसा लगे कि पूरी दुनिया में केवल अव्यवस्था है, तब भी क्या एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के भरोसा कर सकता है? ईश्वर का न्याय हमेशा हमारे सीमित अनुभवों में अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है।
ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। डॉक्टर वॉल्टन का यह विश्लेषण किसी भी इंसान को अपनी दिनचर्या, अपने रिश्तों और अपने गहरे विश्वास के पीछे के असली मकसद को परखने के लिए मजबूर करता है। क्या हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ फायदे के लिए है? क्या हमारा विश्वास सिर्फ तभी तक है जब तक जीवन में सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका ईमानदारी से सामना हर इंसान को करना चाहिए।
ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है, और इसी से मुझे एक और बहुत ही गहरा विचार मन में आ रहा है, जो स्रोत में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है लेकिन इस पूरी चर्चा से जन्म लेता है।
बताइए, क्या विचार है?
अगर ये सच है कि इस दुनिया में अव्यवस्था है और हमें अपने या दूसरों के दुखों का कारण खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो ये बात उस तरीके को कैसे बदल देती है जिससे हम दुखी लोगों को सांत्वना देते हैं?
अरे, ये बहुत ही सुंदर और विचारणीय बिंदु है, क्योंकि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति लोगों को कारण बता के चुप कराने की होती है।
बिल्कुल। शायद अगली बार जब कोई अपना किसी गहरी पीड़ा में हो तो हमें एक डॉक्टर की तरह उस दुख का एक्सरे करके कारण बताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सही बात है।
उन्हें ये नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद उसमें कोई भलाई छिपी है। कोई क्यों और कैसे नहीं, शायद उस धुंधले परिदृश्य में जहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती, वहां बिना कोई कारण दिए, बिना कोई ज्ञान बांटे, सिर्फ उनके साथ चुपचाप खड़े रहना, उनके दर्द को महसूस करना और उनका साथ देना ही असल सबसे बड़ा धर्म है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।